خین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا طالبو بدم المختول بکربلا صلوات پڑھے محمد والے. عزاداران امام در حسین امام بارگاہ نیو جرسی کی سکسٹھ مجلس ہے 1422 ہجری 2020. یہ خواہش کے اوپر, یہ زمانے کے امام کی دعا کے اوپر, دعائے ندبہ کے کلمات ہیں اور یہ کلمات بھی اس زمانے کے امام ہی کے ہیں جو اصل میں وارث غم حسین ہے, وارث عزا ہے. اللہ وہ دن آئے کہ ہم اپنی ان گناہگار آنکھوں سے فرزند زہرہ کی زیارت کریں انشاءاللہ. اور آئندہ عاشورہ امام ہی کے ساتھ گزارے انشاءاللہ. دوستو, مسلسل آپ کی خدمت میں معروضے کر رہا تھا کہ جو ذمہ داریاں ہیں, جو ریسپانسبلٹیز ہیں ہماری عزاداری کے لحاظ سے, امپورٹنس آف عزاداری, ہماری ریسپانسبلٹیز, یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آج ہمارا ایگزسٹنس جو ہے وہ عزاداری حسین کی وجہ سے. آج ہم اگر بچے ہوئے ہیں تو امام حسین کے ذکر کی وجہ سے بچے ہوئے, اور دنیا بھی ہم کو جانتی ہے حسینی سمجھ کے کہ یہ لوگ امام کے چاہنے والے ہیں. اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ روز محشر اللہ ہم کو حسینی کہہ کر پکارے. اگر مولا کا نام سے ہم کو یاد کیا جائے گا تو ہماری بخشش ہے, اس لیے کہ اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں جب تک شفاعت الحسین نہ ہو. اسی لیے بار 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 یہ دعا کرنے کا حکم ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام. یہ وہ دعا ہے دوستو کہ آپ خنوت میں بھی پڑھ سکتے, نارمل اس میں بھی پڑھ سکتے, اور پڑھنا چاہیے. جتنا آپ یہ دعا پڑھیں گے اتنا یو ول گیٹ کلوز ٹو یور امام. امام سے قریب ہونا, امام کے قریب جانا, یہ سب سے بڑی, اور ہماری ہم اپنی ریسپانسبلٹی کو پورا کرنا, لیکن ذمہ داری ہر انسان کی ہے. مولا حسین کی نصرت کے لیے, پلیز غور سے سننا کہ امام کی نصرت کے لیے ایج کوئی بار نہیں ہوتی. آپ نیو جرسی میں بیٹھ کے یہ نہیں بول سکتے کہ یار واٹ کین آئی ڈو, میں کیا کر سکتا ہوں, یا میں تو یہاں بیٹھا ہوا. کوئی یہ بولے کہ میں سینئر ہوں, سینئر سٹیزن ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, یا کوئی بچہ بولے کہ میں کیا کروں, میں ایم ٹو ینگ. مولا نے اپنی خدمت کے لیے, اپنی نصرت کے لیے 96 ایئرس کے مسلم ابن اوسجر سے ملی, 6 مہینے کے علی اصغر سے ملی. صرف آپ کا کام ہے کہ آگے بڑھنا. ہر شہید نے امام کی نصرت کی. کبھی ایج کے بارے میں مت سوچو کہ میں کیا کروں, جو کر سکتے کرو. آج کے دور میں بہترین اعمال اگر ہم کرنا چاہ رہے کہ گھر میں بیٹھ کے بچوں سے بات کرو, سینئر ہے نا, کچھ نہیں کر سکتے, بچوں سے بات کرو, لوگوں سے بات کرو, کربلا والوں کے لیے بات کرو, حسین کے لیے. کچھ نہیں کر سکتے, بیٹھ کے سوچو. صرف سوچنا ہی کافی, فکر کرنا, سوچنا. یہ قرآن کے لیے اللہ کہہ رہا کہ بیٹھ کے تم فکر کرو, قرآن کے بارے میں تدبر کرو, فکر کرتے رہو. تو اسی طرح ذکر حسین کربلا والوں کے لیے بھی کرنا ہے کہ اتنا بڑا سیکریفائس ہوا کیسا, اتنی بڑی قربانی ہوئی کیسا. اور ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے آج کے دور میں. ہم آپ ٹرائی کرو, آپ فکر کرو, صرف سوچنے کا اجر آپ کو مل جائے گا. صرف سوچنے کا اجر, کچھ نہیں کر رہے آپ, بیٹھ کے سوچ رہے کربلا کے بارے میں کہ اف آئی گیٹ چانس آئی ڈو دس, آئی ڈو دس, آئی ڈو دس, آئی ڈو دس. کہ ایک بزنس مین بیٹھ کے سوچتا نہیں, ایک کاروباری آدمی بیٹھ کے سوچتا نہیں کہ میں اپنے بزنس کو کیسے بڑھاؤں. کوئی جاب کرنے والا یہ پلان نہیں کرتا کہ میں روز آفس جا رہا لیکن میں آگے کیسے بڑھوں. دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے کہ جو بولے میں سوچتا ہی نہیں کچھ, میں جہاں ہوں وہ ٹھیک ہوں؟ کوئی نہیں ہے. ہر آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا, ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا. کچھ نہیں کر سکتے. نصرت امام صرف واجبات پہ عمل کر رہے, یہ بھی نصرت امام. صرف واجبات پہ تم عمل کر رہے, کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے واجبات نہیں ہو رہے. آپ واجبات پہ عمل کر لو, یہ بھی ایک نصرت امام ہے. اور ہمیشہ نصرت امام کے لیے جو آگے بڑھا وہ ہمیشہ زندہ رہا. میں تو آزمائی کی بات ہے, وہی لوگ زندہ رہتے, وہی لوگ ان کا نام رہتا, وہی ان کا مقام رہتا کہ جو امام کے لیے. آپ کو 1000 واقعات ہیں, 1000 कि कैसे जनाब सलमान के बारे में, जनाब अबू जर के बारे में, कि ये लोग इस्लाम आने से पहले यही सोचते थे कि हमको करना क्या है, ये खुदा नहीं है, ये नबी इब्राहिम, जनाब इब्राहिम के वाकया देखे, इतना बड़ा नबी, नबूवत में पूरे नबियों में हमारे रसूल सरदार है, सेकेंड नंबर पर कौन है, जनाब इब्राहिम है, जनाब इब्राहिम के वाकया है, सूरज को देखे कहा ये खुदा नहीं हो सकता, चांद को देखा कहा ये खुदा नहीं हो सकता, सितारों को देखा ये खुदा, मतलब हर आदमी सोच रहा, नबी सोच रहा, तो हम क्या है, जनाब सलमान के बारे में, जहाँ अबू जर के बारे में, अबू जर के बारे में तो बड़ी बड़ी रिवायतें कि अबू जर बैठे हुए उनके पास, ये मक्का और मदीना के दरमियान रहते थे, मक्का और मदीने के दरमियान रहते, एक छोटा गांव था रास्ते में, जो मक्के से जो काफिले जाते थे उसके बीच में इनका एक गांव पड़ता था, मुसलमान तो नहीं, अभी अल्लाह के रसूल मक्के में आए, आ भी गया, इनकी एज और अल्लाह के रसूल की एज सेम है, अल्लाह के रसूल ने 40 साल के बाद ऐलान किया, और ये इनकी एज और अल्लाह के रसूल की एज सेम, ये इनका सारा काफिला, इनका कबीला, इनका ट्राइब, जब बात आई तो सुनी लो अबू जर के बारे में, पूरा इनकी ट्राइब जो है, जो भी कारवां जाते थे, बिजनेस कारवां, ताइफ से आ रहा, यमन से आ रहा, सीरिया की तरफ जा रहे, इधर जा रहे, तो लूटते थे, लूट के खाते, ये काम अबू जर कभी नहीं करते थे। एक चीज हमेशा याद रखो, अगर उस स्टेज पे पहुंचना है इमाम की मोहब्बत में तो हराम से बचना है, बचपने से हराम से बचना है, तो अबू जर ने कभी कोई काम ऐसा नहीं किया, इनके इनकी ट्राइब वाले करते थे, और गरीब फैमिली के, इनके बाप नहीं थे, ये थे इनके भाई थे और इनकी माँ थी, बस वेरी पुअर, इनके पास जानवर थे, बकरियाँ, हमेशा ये सोचते थे कि ये लोग जो कर रहे हैं, और ये लोग लात जो बुत था उसके मानने वाले थे, और कभी उसकी पूजा नहीं करते थे, मैं वो शॉर्ट करके बोला कि देखो काम करने का नतीजा देखो क्या होता, अबू जर के पास काफ़ी शीप गोट्स ये थे, ये इनसे चराते थे, ये सीधा लेके चले गए, कहाँ लेकर गए, हमेशा चराने लेके जाते, हाथ में एक छोटी सी स्टिक होती थी, चला गए बैठे बैठे जानवर इनके कर रहे, और ये बैठ के सोचते रहते थे, इनके बारे में तो यहां तक है कि ये उस जमाने में नमाज पढ़ते थे अल्लाह की, मतलब उस वजह से नमाज नहीं पढ़ते जैसा हम नमाज पढ़ते, आप देखो कि ये लोग काम कैसा करें, बैठे भी रहे सामने जानवर है, अबू जर बैठा हुआ है, एकदम जो है उन जानवरों के ऊपर भेड़िए ने हमला किया, भेड़िए ने हमला किया, तो इनकी जबान से यूं ही निकला कि यार तू अजीब पागल है, तू इतना ताकतवर है, कमजोर जानवरों पे हमला कर रहा, इस तरह बोल दिया, बोलना था उसने पलट के इनको कहा बेहतरीन अरबी में, ये नहीं कहा उसकी उसकी जबान नहीं अरबी, भेड़िया बात नहीं करते हमारी तरह, और उसने पलट के कहा तुम मुझे बोल रहे, अरे मक्के में आखिरी नबी आया उसको नहीं मान रहे, वहां उसको सता रहे, तो मैं क्या हूं, बस ये सुना इन्होंने लकड़ी जमीन पे फेंकी, कहा आखिरी नबी आ गया, यह दो रिवायतें, एक रिवायत है कि एक भाई को अपने भाई को भेजा छोटे भाई को, एक रिवायत है कि खुद चले, काफी उलमा ने खुद जाने के लिए लिखा, ये सीधा निकल गया मक्के का, दो रात का सफर था, सफर तय करके चले गए, माँ से कहा मैं मक्का जा रहा हूँ, मक्के में किसी को नहीं जाते, मक्के में पहुंचे, खाने काबा की जियारत की और जमजम गए पानी पिया, पानी की पी के वहीं बैठ गए, खामोश बैठ गए, देख रहे थे कि पूरे काबे के अंदर ग्रुप्स बन के लोग बैठे हुए, उस जमाने में काबा ऐसा नहीं था, काबे के तरफ घर थे, थोड़ा सा हिस्सा था, इतना 30 लाख आदमी 3 मिलियन 4 मिलियन थोड़ी तवाफ करता था, और अतराफ में घर थे जिसमें शोएब अबू तालिब भी था, बैठे हुए देखा कि पूरे ग्रुप्स बैठे हुए और सिर्फ अल्लाह के रसूल की बुराई कर रहे, गीबत कब से है देखो, क्या बुराई कर रहे कि इनके इस्लाम के आने से हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया, ये नया मजहब लेकर आ गया, ये किया ये किया, अल्लाह के रसूल के बारे में बातें कर, ये वो पीरियड है जिस पीरियड में अल्लाह का रसूल बाहर नहीं निकल रहे थे, इतनी सख्ती थी कि बाहर निकलते तो मार देते, तो अल्लाह के रसूल एक ऐसी सीक्रेट जगह पे मुखीम थे, इन्होंने देखा कि हर तरफ रसूल के बारे में बात कर, अच्छा ये जबान नहीं खोल सकती कि मैं रसूल से मिलने आया तो इसको मार देंगे, ये खामोश बैठे हुए जमजम के पास, एकदम देखा कि ग्रुप्स में आवाज बुलंद है, देखो अबू तालिब आ रहे अबू तालिब आ रहे, जैसे ही आवाज बुलंद हुई इन्होंने पहली दफा जनाब अबू तालिब को देखा, एक शानदार शख्सियत, बुर्दबार शख्सियत, वेरी हैंडसम, लाजिम होंगे हैंडसम, 12 इमामों के बाप है, तो आए काबे का तवाफ किया, तवाफ करके जमजम के पास आए, देखा एक अजनबी बैठा हुआ है, पूछा कौन हो तुम? इसने कहा कि मैं फुला कबीले का। तो कहा मुसाफिर हो? तो कहा हाँ मैं मुसाफिर हूँ, कुछ काम से आया हूँ। तो कहा चलो मेरे घर खाने पे। एक अजीब बात थी दोस्तों, ये अजीब बात थी कि कोई मक्के में आए और अबू तालिब के दस्तरखान पे ना खाए। कमाल है, कमाल था उनका। ऐसा सखी लेकर गए, लेके जाके खाना खिलाया, फिर आके अबू ज़र बैठ गए। नेक्स्ट डे फिर वही हुआ, फिर जरा अबू तालिब आए, फिर देखा कि अबू ज़र बैठे। पूछा गए नहीं अभी? उसने कहा नहीं गया। कहा चलो खाने पे। फिर लेके गए, खाना खिलाया। अच्छा थर्ड टाइम, थर्ड डे वही इंसिडेंट कि कहा कि अभी तक नहीं गए? तो कहा नहीं नहीं गया। तो कहा चलो मेरे साथ। तीसरे दिन, ये अरब का दस्तूर है, जब जनाब अमीर की मौला का रिश्ता लेके जो जनाब उमुल बनीन के पास जनाब अखीर इब्ने अबू तालिब गए थे, वहां पे भी यही हुआ था। तीन दिन के बाद आपने कहा था कि मैं रिश्ता लेकर आया। ये अरब का ट्रेडिशन है कि अगर कोई मुसाफिर कोई मेहमान आए तो तीन दिन तक पूछते नहीं कि क्या किस काम से आए, उसके बाद पूछते हैं कि भाई क्या काम क्या था। थर्ड डे जनाब अबू तालिब ने कहा कि आखिर तुम्हारा मंशा क्या, क्यों आए? तो अबू ज़र ने कहा कि मैंने सुना है कि आखिरी नबी आए। अबू तालिब ने कहा क्या तुम उस पर ईमान लाते हो? तो अबू ज़र ने कहा कि हाँ मैं ईमान लाता हूँ। आप देखो सिक्योरिटी कैसी थी जनाब अबू तालिब की अल्लाह के रसूल के लिए, और ज़माना कितना पुराशब था, ये नहीं मालूम था किसी को ये है कहाँ, इसलिए इतना सख्त ज़माना था। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान जान के दुश्मन, खून के दुश्मन थे। तो जनाब अबू तालिब ने क्या किया, जनाब हमजा के हवाले कर दिया कि इनको देखो। हमजा ने भी वही सवाल किया, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा कि सेक्रीफाइस और काम करने का नतीजा। पूछा हमजा ने भी एग्जैक्टली वही सवाल किया कि क्यों आया? तो कहा मैं अल्लाह के रसूल से मिले, आखिरी नबी से मिला। तो कहा ईमान लाते हो? तो कहा हाँ मैं ईमान लाया। उन्होंने क्या किया, लेके जाके जनाब जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया, मौला अली के बड़े भाई। जनाब जाफर ने भी सेम सवाल किया, उन्होंने कहा हाँ मैं ईमान लाता हूँ। अब उन्होंने लेके जाके मौला के हवाले किया। उस जमाने में मेरा मौला वॉज वेरी यंग, 17-18 साल का, से अल्लाह की शान हुस्न जमाल का मालिक। मौला ने अबू ज़र से मुलाकात की, मौला ने भी एग्जैक्टली वही सवाल किया। तो कहा हाँ मैं ईमान ला लिया, लाता हूँ। तो कहा चलो मेरे साथ। इतना सख्त ज़माना था कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने, जब मैं खिस्सी बता रहा हूँ, जनाब अबू ज़र से कहा कि अबू ज़र सुनो कि मैं मेरे पीछे पीछे चलना, एक जगह एक स्पॉट पे पहुँच के मैं चारों तरफ देखूंगा, अगर हालात सही है तो मैं सीधा अंदर घर में दाखिल हो जाऊँगा, तो मेरे साथ दाखिल हो जाना, और अगर मैं नीचे झुका तो समझना बहुत ही खतरनाक मामला है, लोग हर तरफ है, तुम मेरे साथ नहीं आना। अबू ज़र ने कहा ठीक। अली ने कहा कि अबू ज़र मेरे पीछे चलो। एक जुमला बोला था एक दफा कि मेरे पीछे चलो, पूरी जिंदगी अली के पीछे चला, पूरी जिंदगी। ये सबसे बड़ा मैसेज था इसमें। अली ने एक ही दफा कहा था अबू ज़र से कि मेरे साथ मेरे पीछे चलना, हमसे भी कह रहे मौला। अबू ज़र ने पूरी लाइफ कभी अपनी जिंदगी को ऐसा नहीं किया, जहां तक मौला से एक वादा किया कि मौला मैं आपके पीछे चलने वाला हूं, हम भी तो चले, हम भी तो सोचे कि मेरी जिंदगी क्या इमाम अली के पीछे चल रही। ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों हमारा, क्या मेरी जिंदगी मौला हुसैन के पीछे चल रही, क्या मौला हुसैन के साथ मेरे मैं हूं, क्या मैं हर इंसान न्यूजर्सी और न्यूयॉर्क हो पूरी दुनिया के लिए बोल रहा हूं, इसलिए कि ये दरे हुसैन से हर तरफ जारी मजलिस, मैं सिर्फ न्यूजर्सी वालों के लिए नहीं बोल रहा, प्लीज गलत नहीं समझना, मैं एक एंटायर कम्युनिटी की जात जो सुन रहा हूं, मुझे यह बात में कोई यूट्यूब पे सुन कि इमाम अली ने अबू ज़र से एक दफा कहा बस कि मेरे पीछे चलो। सही माना में अली का चाहने वाला जो था, उसने कभी फिर इधर उधर नहीं देखा, हमसे भी मौला कह रहे हमारी पूरी जिंदगी ये मौला हुसैन के लिए, मौला हुसैन के पीछे हम चल रहे, खुद सवाल कर लो अपना, क्या मेरा रास्ता इमाम हुसैन के पीछे चल रहा है इस वक्त, मैं उनके बात को फॉलो कर रहा हूं, बस ये सवाल कर लो खुद ब खुद, जो है सेक्रीफाइस का जज्बा आएगा, खुद ब खुद तुम दीन के लिए काम करने लगो। अगर ये हमारे जहन में ख्याल है, खुद हम चेक करें, कोई और चेक करने की जरूरत नहीं, मैं खुद चेक करूं कि मैं कितना उस रास्ते पे चल रहा जो इमाम अली का रास्ता। आप बोलेंगे मैं तो चल रहा मैं नमाज पढ़ रहा। बाबा सिर्फ नमाज रोजा नहीं, हर चीज काउंट होती है। मुहर्रम के इतने दिन गुजर गए, पहली मुहर्रम से आज 6 मुहर्रम हो गए। आप इंसाफ से बोलो, आपके जहन में आपके कानों में वो आवाज है आज, वो कुछ आवाज आ रही हल मिन नासरन यंसरना की, कि कोई है मेरी मदद करने वाला, कोई है मेरी मदद करने वाला, ये जहन में ख्याल आ रहा नहीं आ रहा। ये असल पॉइंट है कि हम कितना इमाम की मदद कर सकते हैं, हम कितनी इमाम की मदद कर सकते हैं। तो अबू जर ने कहा, देखा कि मौला सीधा दरवाजे में दाखिल है, दाखिल हुए, दाखिल होकर राइट साइड पे मुड़े घर के अंदर। अबू जर भी मुड़ गए। दोस्तों तुम यकीन करो, जब अबू जर ने अल्लाह के रसूल को देखा, ही कुन बिलीव, फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कायनात का मालिक अव्वलमा खलक अल्लाह का नूरी का मालिक सामने सरकार बैठे हुए, सरवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला हुसैन को देखा, इमाम अल्लाह के रसूल को देखा, बैठ गए, सलाम किया। पहली मरतबा सलामुन अलैकुम जो है ये अबू जर ने दिया है, ये इस्लाम में बाद में आया, अल्लाह को इनका अमल इतना पसंद है। पहली मरतबा सलामुन अलैकुम बोलने वाले अबू जर है। देखो कितनी चीजें, अबू जर ने सलाम किया, अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, गुफ्तगु हुई, कलिमा पढ़ा। अब देखना जज्बा, शुरू से अबू जर एक रिवोल्यूशनरी आदमी था, काम करने वाला। इनकी पूरी जिंदगी उठा के देखो, मैं पूरी मजलिस इनके ऊपर पढ़ दूं कि इन्होंने कहां कहां रिवोल्यूशन का बर्पा किया। ये कभी डरते ही नहीं थे, एक लम्हे के लिए नहीं डरते। मैं ये नहीं बोला, खुदा ना खासा आप ये मत बोलो कि आप जैसे अबू जर ने किया मैं भी न्यू जर्सी में करूं। नहीं बाबा नहीं, मैं खाली एक मोटिवेशन के बोल, आप अपने घर में करो, घर से शुरू करो। कुछ नहीं करते, खाली बैठ के सोचो यार मैं मौला हुसैन के लिए क्या कर सकता। गलत नहीं समझना कि मैं बोल रहा कि मार्केट में जाओ, बाजार में जाओ, जाके बोलो। नहीं, मैं एक आपको बता रहा कि अबू जर गफारी जैसी शख्सियत कि जो ईमान के 9 दर्जे पर है, जिससे ज्यादा सच बोलने वाला कोई नहीं। मजाक है, अल्लाह का रसूल बोल रहा, जो खुद सादिक, सादिक खुद है, अबू जहल अबू लहब जिसको सादिक बोलते थे, वो रसूल का यह हाल कि बोले जमीन ने ना किसी का बोझ उठाया ना आसमान ने साया किया, अबू जर से ज्यादा सच्चा। आप खुद सोचो, सच्चाई ऑनेस्टी ईमानदारी ये बेसिक चीज है ना मनी। हम चेक करना है कि मेरे पास कितनी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसे के मामले में कर रहे, पूरी जिंदगी है ऑनेस्टी, एक वर्ड है, पूरा इस्लाम ऑनेस्टी के अंदर, पूरा ईमान ऑनेस्टी के अंदर, कि अगर ऑनेस्टी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये चीजें हमको, ये चीजें चेक करना, करबला की आवाज ये, करबला ये तकाजा कर रहा, और कोई चीज का तकाजा नहीं कर रहा, करबला इसका तकाजा कर रहा कि पूरी जिंदगी अबू जर कि अल्लाह का रसूल अगर किसी को बोलते कि इससे ज्यादा ऑनेस्ट नहीं। अबू जर उस शख्सियत का नाम है कि जब पहला रिवोल्यूशन इस्लाम का, पहला इनकलाब किसने लाया, इस्लाम लाते इन्होंने इनकलाब लाया, इस्लाम लाते इन्होंने काबे के बाद जाके कलमा पढ़ा। ये वो पहला शख्स है जिस जमाने में अल्लाह का रसूल ओपन होकर नहीं पढ़ रहा था, उस जमाने में अबू जर ने काबे के पास कहा और इन लोगों ने मारा, फिर वहां से छूट के निकल गए, वहां सब छोड़ा। उसके बाद तीसरे दौर में, जो जब तीसरे दौर में इस्लाम के तीसरे दौर में उस हुकूमत को ललकारा कौन, उसको रोका कौन, के वो हुकूमत जाबिर हुकूमत घबरा गई थी, जाबिर हुकूमत घबरा गई थी। उस जालिम ने अबू जर को सीधा सीरिया भेज दिया था उसके गॉडफादर के पास, और सीरिया में जो हकीम था आप जानते हैं, उसने कहा यार प्रॉब्लम मेरे पास क्यों आया, मैं क्या करूं। सीरिया में उसको नहीं छोड़ रहे थे, बोल रहे थे जब कोई झूठ बोलता बोलते तो झूठ बोल, ये इस्लाम नहीं, ये रसूल का इस्लाम नहीं है जो तुम इस्लाम पेश कर, ये हुकूमत ऐसी नहीं करते। इन्हें हर वक्त इनकलाबी, ऐसा इनकलाबी इंसान। उसने क्या किया, उसने लेके जाके इनको साउथ लेबनान में भेज दिया। आज जो साउथ लेबनान की शियत है ना, पूरी साउथ लेबनान की शियत, ये अबू जर का सदका है। अबू जर ने वहां पर लोगों को शिया किया, अबू जर ने वहां पर प्रोपोगेट, जिस जगह जाते थे फजाले मौला सुना, जिस जगह जाते थे बोला के, ये नहीं कि जंग के वाकया सुनाते थे, किरदार अली बताते थे। कभी अबू जर ने ये नहीं कहा कि मरहब को ऐसे मारा, अंतर को ऐसे मारा, नो, बताते क्या थे, ये बताते थे कि देखो मेरे मौला का किरदार क्या है, मौला क्या चाहते, अल्लाह क्या चाहता, अल्लाह की वहदानियत क्या है, रसूल की रिसालत क्या है, इशादत रसूल क्या है, इमाम अली की जिंदगी क्या है, तुम अपने आप को सही कैसे करना टूवर्ड्स इमाम अली। ये तो पूरे साउथ लेबनान की आज पूरी शियत, अब मैं नहीं बोलता ज्यादा, साउथ लेबनान की पूरी शियत या बुजुर्ग का है, क्या बुजुर्ग ने उनको वापस शियत, और ऐसा विलायत अली दी कि उनका ईमान इतना स्ट्रांग कि वो एक लम्हे के लिए भी इधर उधर नहीं गए। जिस तरह अबू जर किसी बड़ी हुकूमत से ताकत से नहीं डरते, आज तक सऊदी लेबनान वालों ना हुकूमत से डरते ना किसी ताकत से डरते। एक साल बाद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, या अली मन, ये मैं बोलना चाह रहा कि काम करने के लिए आपको किसी ना किसी एक को अपना आइडियल बनाना है, और अबू जर वो शख्स है। अच्छा, उसके बाद जब साउथ लेबनान में प्रॉब्लम हुआ, हर तरफ शियत होने लगी, हर तरफ विलायत अली का नारा लगने लगा, हुकूमत डर गई, फिर बुला के क्या कहा इस जालिम ने कहा कि अब तुम कहां रहना चाहते, दुनिया में सबसे खराब हिस्सा कौन सा है, मक्के में, मक्के वाला पूछ रहा था, तो मदीने वाला। अबू जर ने कहा रब्जा, रब्जा मक्के से 50 या 100 किलोमीटर पर एक गाँव है, टोटल से ना कहीं पानी का खतरा है, ना कोई झाड़ है, ना कोई घर है, ना कोई आबादी है, पहाड़ पहाड़ों के बीच में। उसने कहा अच्छा, रब्जा सबसे खराब जगह है, मैं तुमको वहीं भेज देता हूं। दोस्तों, 2 साल, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स अबू जर वहां रहा, अकेला 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 फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ बेटा, 2 साल। ऐसा इमाम अली का शिया, ऐसा इमाम अली का चाहने वाला। अब खाली ये सुन लो कि अबू जर उस शख्सियत का नाम है कि पूरी दुनिया किसी मजहब का आदमी हो, एक तमन्ना में जिंदगी गुजारता, हम सब एक ही तमन्ना में जिंदगी गुजारे कि हमको जन्नत मिले मरने के बाद। कोई ऐसा शख्स है कि जो ये बोले कि आप जब मरने के बाद मैं जहन्नम में जाना चाहता, कोई नहीं बोलेगा। हर आदमी की दुआ यह है कि मुझे जन्नत मिले, मुझे जन्नत। और अल्लाह कुरान में 1000 जगह वादे कर रहा है कि तुम ये करोगे तो मैं तुमको जन्नत दे दूंगा, और फिर जन्नत को भी डिस्क्राइब किया कि इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत, तुमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, सारी चीज़ें अल्लाह बता। अब अल्लाह के रसूल ने बार बार यही कहा, इन्हें आज से नहीं है, नबी लूत उन्होंने शैतान को बोला था कि अगर तू अल्लाह को मान लेगा तो, उसने कहा अगर मैं तुम्हारे अल्लाह को मानूंगा तो मुझे मिलेगा क्या। नबी ने कहा कि जन्नत मिलेगी, उसने कहा व्हाट इज जन्नत, जन्नत है क्या, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने कहा ये कोई बिग डील नहीं, ये तो मैं भी बना लूंगा। आप सोचो, हर नबी ने यही कहा अपनी उम्मत से, तुम अच्छे काम करोगे तुमको जन्नत मिलेगी। तो हर की ख्वाहिश क्या है कि एंड ऑफ द डे मुझे जन्नत मिले, और जन्नत अगर किसी की ख्वाहिश करे तो कितना बड़ा मकाम होगा उसका। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, हर इंसान जन्नत की ख्वाहिश कर रहा, और जन्नत 3 आदमियों की ख्वाहिश कर रही, एक सलमान, अबू जर, हमारे यासिर। आप इमेजिन, अब तीनों कौन है, तीनों रिवोल्यूशनरी शिया इमाम अली के, कोई कंपैरिजन है दोस्तों। नाम सुन के खुश हो रहे कि सलमान क्या, सलमान इतना मौला अली का चाहने वाला, लेकिन सलमान का कंट्रीब्यूशन क्या है, सलमान चाहता क्या है, सलमान ने जिंदगी कैसे गुजारी, सलमान का कंट्रीब्यूशन क्या है टुवर्ड्स इस्लाम, अबू जर का ये देखो, यही चीज करबला वालों ने की, करबला वालों ने भी यही चीज की कि एक लम्हे के लिए इधर से उधर नहीं गए। उनके दिनों में वो नहीं था कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा। अब सिर्फ उनका सैक्रिफाइस अगर हम देख लें, वो एहसास पैदा हो जाए, वो फीलिंग्स पैदा हो जाए कि इतना हमारे लिए किया, इतना हमारे लिए किया कि आज हमको सीधा रास्ता बता दिया। और फिर मौला हुसैन चाह रहे क्या हमसे, कुछ भी नहीं चाह रहे, इमाम एक ही चीज बोल रहे कि तुम इस पर अमल कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह सभी कर रहे हैं, खुदा ना खासा गलत मत समझो कि मेरा मतलब है कि कोई नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा कि अब जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा करो, और सोचो कि मैं क्या कर सकता। और जब आपके फिक्र बदलेगी ना, तो आप ईमान इज रियली ईमान के सही चाहने वाले बनेंगे। सर्वत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस दोस्तों, अबू जर का मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं तो बीच में बात आ गई थी कि इंसान कामयाब हो के जो मासूम के लिए, दीन के लिए काम करे।
और वो अगर कुछ ही नहीं करते तो ऐसे हजारों आए, लाखों आए चले गए, लाखों आए चले गए, वरना कोई नहीं है। ऐसे ऐसे मौके आए, ऐसे ऐसा वक्त आया कि इंसान कर सकता था लेकिन उसने कुछ नहीं किया, तो बाद में रिग्रेट कर बाद। और अगर तुमने कर लिया, मैं ये अशय में मैं सिर्फ ये बोल रहा कि जस्ट गेट क्लोज टू योर इमाम, ये अपनी जिम्मेदारी समझो। मोहर्रम की जिम्मेदारी है, मोहर्रम की रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी फिक्र बदलना। मोहर्रम एक प्रैक्टिस नहीं, मोहर्रम प्रैक्टिस नहीं, बल्कि मोहर्रम चेंज का नाम। थोड़ा तो चेंज आना, आज छह दिन हो गए हमारे पास आया कुछ नहीं। आज रात के एक मजलिस में, कैसर बाग की मजलिस में मैंने बात बोला एक बार, और इसलिए कि वो भी यूट्यूब पे आए लोग सुन रहे थे, तो ये भी मजलिस सुन रहे वही लोग, तो उनको सिर्फ ये बता रहा कि वहां पर मैंने जो बात बोली थी वो बात रिपीट कर, कि हमको बस चेंज होना। आजकल बेहतरीन मौका क्या है कि औलाद को, मेरा एक ही फिक्र, औलाद बदलो, औलाद को चेंज करो, औलाद को प्रोटेक्ट करो। ये फिक्र हमारे पास नहीं आज। आप सोचो मैंने शायद कहा था आपके अशरे में या नहीं, अगर कहा था तो आप दूसरी तरीके से कह, कि शैतान इससे लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है, ऐसे जगह पे उसने गुमराह किया जबकि बाहर का माहौल बहुत अच्छा था। काबिल को गुमराह किया, काबिल को गुमराह किया, नबी नूह के बेटे को गुमराह किया, तो हमारे बच्चों को नहीं कर सकता, हमारी औलाद को नहीं कर सकता। उस वक्त काबिल का जमाने में तो सिर्फ छह आदमी थे, अब बाहर कोई माहौल खराब नहीं था, बाहर बिल्कुल माहौल खराब नहीं था, आज बाहर माहौल खराब। आप ये नहीं बोल सकते कि नबी आदम के घर में हराम रिज़्क़ था, नबी है उनका बड़ा बेटा, क्या हाल हुआ होगा आदम का कि जब उनसे कहा कि जाके अपने बेटे को तबलीग करो, और वो शराब में लगा हुआ, वो गुनाह में लगा हुआ, वो बुतपरस्ती में लगा हुआ। आदम तड़प तड़प के रोते थे कि हाय मेरे बेटे का क्या हाल होगा, शैतान कितना। और अल्लाह बार बार कुरान में कह रहा, सूरह यासीन में बार बार कह रहा कि ये अदुबू मुबीन है, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, वार्न कर रहा है, लेकिन हम बिल्कुल ईजी ले रहे। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि बच्चों को, औलाद को दीनदार बना दो, बस औलाद दीनदार बन जाए तो ये तुम्हारा ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जाता, ऐसा इन्वेस्टमेंट होता कि तुम रहो नहीं रहो हर चीज तुम्हारी पहुंच जाएगी, तुम्हारी लहर नूर से भर जाएगी, नूर से तुम्हारे गुड डीड्स एक मिलियंस की तादाद में चलेंगे, तुम्हारे बैड डीड्स नीचे आ जाएंगे अगर तुम्हारी औलाद सिरात मुस्तकीम पे आ जाए। सिर्फ अगर औलाद दीनदार, और बेटा हो या बेटी हो, वो अगर अमल कर ले कोई ऐसी चीज जो इस्लाम की, माँ बाप को उसका फायदा पहुंचता, और ऐसा फायदा पहुंचता कि तस्वीर भी नहीं कर सकता कि उसको कितना फायदा मिला सिर्फ औलाद के लिए। हम कभी इसलिए, इसके लिए पहले खुद अमल करना पड़ता, पहले खुद प्रैक्टिस करना पड़ता। मिसाल के तौर पर अब माँ जो है हिजाब नहीं करती, मिसाल दे रहा, अब बेटी को बोल सकती मैं बैठ के मूवीज देख रहा, मैं बेटे बच्चों को बोल सकता कि डोंट सी द मूवीज, मैं गाने सुन रहा, मिसाल दे रहा, मैं बोल सकती मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के लोगों की बात कर रहा, मैं बोल सकती कि बाबा तुम भी मत करो, तुम मत करो, ये गलत है। 1000 चीजें, ये छोटी छोटी चीजें नहीं, ये याद रखो, ये छोटी चीजें नहीं, ये वो चीजें कि जो तुमको ऐसे प्रॉब्लम में डाल देगी। आज आबिद गुलामी की बात समझ में नहीं आ रही, आबिद गुलामी की बात समझ कब आएगी, जब तुम अकेले रहोगे, जब ना तुम्हारा बेटा रहेगा, ना बेटी रहेगी, ना माँ रहेगा, ना बाप रहेगा, ना दौलत रहेगी, ना रिश्वत रहेगी, ना कोई रहेगा, यू विल बी ऑल अलोन। कभी तो होने वाले हो, आप बोलेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग, कब होने वाले, कोई गारंटी नहीं है मेरी जान, कोई गारंटी नहीं है। एक सेकंड में, एक लम्हे में ऐसा जिंदगी बदलती, 180 डिग्री जिंदगी बदल जाती है, आप देखते रहते जिंदगी बदल जाती है। ये चीज का ख्याल रखो, इस चीज के लिए करबला के लिए, यही गुरूर और तकबुर यजीद का था कि मौत क्या है। अब आपको मैं एक बात बोलूं, नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, कितना बड़ा बादशाह कि लाखों की तादाद में उसके सामने लोग सर झुकाते थे, नबी इब्राहिम का जमाना है। प्लीज गौर से सुनना कि जो आज हम इजी ले रहे, नबी इब्राहिम के जमाने में नमरूद हाकिम था, उस जमाने की नॉन वर्ल्ड, गौर से सुनना, उस जमाने की नॉन वर्ल्ड, उस नॉन वर्ल्ड उसको खुला मानती थी, हर आदमी सजदे कर रहा, हर गांव में, हर घर में उसका नाम का पुतले रखे हुए, उसके सामने सर झुका। नमरूद के पास उस जमाने में नुजूमियों का जोर बहुत था, स्टार्स का इल्म। ये स्टार्स के इल्म के चक्कर में नहीं जा रहा, मुझे मालूम है यूथ जो है बहुत इसकी फिक्र करता है कि ये स्टार क्या बोल रहा, वो स्टार क्या बोल रहा, आपका स्टार क्या है, इसका स्टार क्या है। ये सब बकवास है, याद रखो, एब्सोल्युटली बकवास है, ये हराम है। मौला अली का पूरा एक सर्वन है नजीब अल्लाह का कायम के ऊपर। स्टार्स का कोई इल्म नहीं है, स्टार्स के चक्कर में नहीं जाना कि तुम्हारा स्टार ये है, मेरा स्टार ये। बात कर लो कोई हर्ज नहीं है, डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है, बिलीव नहीं करना कि अगर तुम्हारा स्टार ये रहेगा, ये डेट रहेगी तो तुमको ये मिले, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलता कि अगर तुम स्टार्स के चक्कर में क्या जा रहे हैं, जिसके दरवाजे पे सितारा उतरा उसके पास जाओ। ये सितारे तुम्हारी तकदीर थोड़ी बदलेंगे, सितारे तुम्हारी तकदीर थोड़ी बदलेंगे, ये सितारे नहीं बदलेंगे तकदीर, वो बदलेगा जो सबकी तकदीर बदलता है। तो आप, मैं आपसे बता रहा सर कि नुजूमियों ने आके नमरूद से कहा कि सुन तेरी मौत करीब है। किसको बोल रही, किसको बोला उन्होंने, जिसके सामने लाखों लोग सजदा कर रहे, जिस जो अपने आप को खुदा बोल रहा, उसके पास आके बोला कि सुन तेरी मौत करे। उसने कहा मौत, जैसे आज हमारी हौसला देना, कभी आप मौत के बाद अरे वो मजलिस में नहीं जाते भाई, बोलते हैं क्या बकवास बातें कर रहे, क्या डरा रहे। आप डर रहे क्यों, अपने आप को अली वाला बोलते हो, डरते भी हो। जब भी मुझसे कोई बोलता है कि मौलाना बहुत डराते हो, मैं कहता हूँ यार तुम अपने आप को अली वाला बोलते हो, हुसैन वाला बोलते हो, डरते भी हो। मैं मौत का कोई जिक्र नहीं कर रहा आज मजलिस, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा कि हमारे पास कितना पर्दा है। एक लम्हे के लिए हम हकीकत को जानना नहीं चाहते, एक लम्हे के लिए हम ये नहीं जानना चाहते कि कोई मौत हमको भी आएगी। जबकि मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा दरे हुसैन के मिंबर से बोल रहा कि मौला अली के पूरे खुतबे देखो, मौला हुसैन की दुआएं, अभी आपने दुआएं रोजे अरफा इमाम हुसैन की पढ़ी, दुआएं रोजे अरफा मौला हुसैन की पढ़ी, यार क्या पढ़ी थी, इंग्लिश में पढ़ी होगी ना, उर्दू में पढ़ी होगी ना, तो आपने पढ़ा तो मौला हुसैन ने क्या कहा उसमें, डराया नहीं, उस जगह के बारे में बताया नहीं। दुआएं वो हमजा शुमाली पढ़ी है माह रमजान में, सिर्फ रोजे रखने से नहीं होता, ये चेंज आना। जब तुम्हारी फिक्र बदलेगी ना, तुम यकीन करो हुसैन तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मौला हुसैन खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। जब ये काम करो हर चीज से तुम छोड़ दो, जो इवन वर्ल्ड की जो चीज है, जिसको हुसैन ने जिसके लिए जंग की है, मौला हुसैन में बार बार पढ़ा दुआ कुमैन, हर जुमेरात को पढ़ते हो रिलीजियसली, खुदा के लिए इंग्लिश में पढ़ो, अरबी में पढ़ो ही मत, उर्दू में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, उसके बाद तुम्हारी लाइफ में 100% चेंज आता है अगर अपनी लैंग्वेज में पढ़ोगे। इसलिए कि अपनी लैंग्वेज में पढ़ोगे तो तुमको एहसास हो, यू विल फील इट कि इमाम अली ऐसा बोल रहे, दुआ कुमैल हमेशा उर्दू में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, जो आपकी लैंग्वेज है, गुजराती है गुजराती लैंग्वेज में, तो मौला हुसैन और इमाम अली क्या कह रहे हैं। दुआ अबू हमजाए शुमाली चौथे माह की दुआ, जैसे दुआ कुमैल है वैसी दुआ अबू हमजाए शुमाली, उसमें क्या कहा उन्होंने, चौथा इमाम क्या कह। तो आप सोचो नमरूद जैसी शख्सियत जिसके जहन में, जिसके बोलते हैं वाइल्डेस्ट ड्रीम, ख्वाब में भी वो कभी नहीं सोचता था कि उसको मौत आएगी। नजूमियों ने क्या कहा, सुन तेरी मौत करीब है। उसने कहा मौत क्या है, मौत कैसे आ सकती मुझे, तो कहा तू कुछ समझ बहुत जल्दी। तो अच्छा उसने कहा फिर आएगी कैसे मौत, कहा एक मस्कीटो से आएगी, मस्कीटो मच्छर। तो उसने कहा मस्कीटो मुझे मारेगा, अनबिलीवेबल, कहा कि मैं खुदा हूं, मेरे पास इतनी बड़ी फौज है और मस्कीटो मुझे मारेगा। उसने कहा, उस नुजुमी ने कहा मस्कीटो रीजन बनेगा, तेरी नाक से दाखिल होगा और चंद दिन तकलीफ होगी और तू मर जाएगा। उसने कहा तू पागल हो गया, मस्कीटो मेरी नाक से दाखिल होगा और मैं खामोश बैठा रहूंगा, जाएगा कैसा। उसने क्या किया, एक ग्लास का कंप्लीट रूम बनाया, बड़ा रूम बनवाया और रूम बना के अब सेंट्रल एयर कंडीशन बनाया, जैसा भी था, बाद में नहीं पूछा हमसे, मैं आपको बता रखा था, एक ऐसा एयर टाइट रूम बनाया कि जहां से मस्कीटो क्या कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती, कोई चीज। उसने कहा अब मैं चैलेंज करता हूं, कि मुझे मच्छर कैसे काटेगा या मच्छर कैसे मुझे मारेगा। वो खुद तो लोगों ने कहा वो खुदा जो है ना वो तुम मच्छर को भेजेगा तो मर जाएगा, रियल जो खुदा। उसने कहा पागल है, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे रूम में जाके रह गया। आप सोचो मौत से वो भी डरा था। अगर आज हम डर रहे, हम ये बोल रहे कि हमको मजलिस नहीं चाहिए जिसपे मौत का जिक्र है, मैं तो जिक्र भी नहीं कर रहा मौत का, मैंने तो बिल्कुल नहीं कर, मैं खाली ये बोल रहा कि उस लम्हे से डरो, कोई काम करो इमाम हुसैन के लिए, इफ यू वर्क फॉर इमाम हुसैन, फिर तुम्हारे लिए खुद इमाम आके तुमको रिसीव करके लेकर चला जाए। आपको मालूम है कि जब मौला अली के रियल चाहने वाले मरते हैं और जिनको जब उनकी ग्रेव में लिटाते हैं तो वो जमीन जैसी ग्रेव बंद होती, वो जमीन जिसपे वो मौला का चाहने वाला लेटा हुआ दूसरी जमीन के ऊपर फखर करता है कि मेरे दामन में वो है जो रियल अली का चाहने वाला है। आप समझे मेरी बात कि कितनी बड़ी बात है। तो वैसे तो बोलो इन चीजों को छोड़ दो, मोहर्रम में आपको गिफ्ट देना है, इस मोहर्रम में कोई चीजों को छोड़ना जो आप डिसाइड करो, आप डिसाइड करो कि मुझे क्या छोड़ना। अब हिजाब की बात नहीं कर रहा, मुझे मालूम है हिजाब की बात करें फिर हिजाब शुरू कर दिया बोलेंगे, ठीक है मत कर, मेरा काम है बोलना, मिंबर का काम है बोले। नमरूद ने क्या किया, हर तरफ से अटैक कर लिया कि मुझे मच्छर कुछ नहीं कर सकता। उसके अखल में यह बात नहीं आई थी कि मच्छर बाहर से नहीं आएगा, वो भेजेगा जो खादिर मुतलक है, वो यहां पैदा कर सकता। उसने कमरे में पैदा किया मच्छर, कमरे में पैदा किया मच्छर को। दोस्तों जो दुनिया का खुदा था जिसके सामने मिलियंस की तादाद में लोग नॉन वर्ल्ड के लोग सर झुकाते थे, उसको 1000 साल हो, इतना मर्सीफुल है, इतना मर्सीफुल है कि 1000 साल तक उसको जिंदगी का जितना करना है करे। अल्लाह की शान एक अजीब है कि जब कोई जुल्म करता ना तो उसको ढील जरूर देता, कहीं हमको तो ढील नहीं दे रहा। ये भी सोचो, ये भी सोचो, ये भी सोचो, कहीं मैं मेरे गुनाहों की वजह से मुझे ढील तो नहीं मिल रही, इतने लंबी जिंदगी दे दिया इसलिए कि अल्लाह ये बोलता कि जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा, कहीं जा तो नहीं सकता ना मेरी हुकूमत से, आएगा तो मेरे पास ही ढील दे देता, कहा करो जितना करते करो, एंड एक दिन आएगा कि मैं खींच लूँ। उसका मिसाल आप सद्दाम का भी देख सकते हैं, 30 ईयर्स आयरन रॉड की तरह हुकूमत किया, कभी सोच नहीं सकता था। जब जालिम का अंजाम अल्लाह ने रस्सी को खींचा, गटर में से निकला, यह है जालिम का अंजाम। नमरूद अंदर बैठ गया, कुछ नहीं हुआ, एकदम नमरूद देखता है कि मच्छर की आवाज है, मच्छर इसके सर पे घूम रहा। अब इमेजिन करो, आधा हो गया, पागल हो गया, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है कभी इधर जाता है कभी, देखो तमाशा देखो अल्लाह कैसा मजाक उड़ाता है कि अगर तुम अल्लाह से अल्लाह की इताअत नहीं करोगे तो तुम्हारा हशर हो दाखिल होगा और दाखिल होकर उसमें खत्म हो गया। तो मैं आपसे यह बोलना चाह रहा कि आप इस गफलत में मत रहो कि मुझे कुछ नहीं होगा, डर हमको होना चाहिए इमाम अली के शियों को, इसलिए कि कोई आए जितने जालिम आए डर हमको इसलिए होना चाहिए कि ये हम इमाम अली के शिया और शैतान हमारे पास ही आएगा। बस इसके लिए दोस्तों बेहतरीन अमाल में इन मुहर्रम के उसमें मैंने आपसे कहा कि ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना, ज़ियारत इमाम हुसैन रोज पढ़ो, डोंट लीव इट, और पूरे एंटायर फैमिली को जाना, मुस्लिम की फैमिली को हदिया करो। उसके बाद आशूरे के बाद इन 11 मुहर्रम से 40 तक इमाम हुसैन की वो ज़ियारत जिसको ज़ियारत अरबईन बोलते हैं, 40 दिन वो ज़ियारत पढ़ो। मैं आपसे कुछ नहीं बोलता, दरे हुसैन के जरिए जो भी मुझे सुन रहा मुझे दुआ दोगे तो, इसलिए पहली दफा मुहर्रम में आया और मैं आपको वो तोहफा देके जा रहा हूं कि आप ट्राई करके देखना। मुझे कुछ मैं आपसे 10 मिनट मांग रहा खाली, 10 से 12 मिनट एवरी डे, 24 घंटे में आप 12 मिनट्स निकाल लो, 10 to 12, इससे ज्यादा नहीं। पढ़ना नहीं आता टेलीफोन पे डाउनलोड करो और खड़े हो जाओ। ज़ियारत अरबईन 11 मुहर्रम से अरबईन तक जिस हालत में तुम है पढ़ सकते, बस इससे ज्यादा मिंबर का तकद्दुस से मैं नहीं बोलता, नमाज मत पढ़ो लेकिन जिस हालत में तुम पढ़ सकते, हुरूफ का हाथ नहीं लगाना, बस मर्द 2 रकअत ज़ियारत इमाम हुसैन बाद में पढ़ना, 12 मिनट स्पेयर करो। 1442 के मुहर्रम में दरे हुसैन की मदीसों में बोल रहा हूं, यह एक ऐसी ज़ियारत है जैसे आशूरा है, आशूरा थोड़ी बड़ी, आशूरा पढ़ते पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा आशूरे, मैंने बहुत बोला पूरी दुनिया में माशाल्लाह आशूरा पढ़ी जाती, मैं तो आशूरे के अमल भी कराता, लेकिन आज आपको एक बात बोल रहा है, ये साल अरबाइन तक करो, तुम्हारी जिंदगी में चेंज कितना आता, तुम्हारे प्रॉब्लम्स कितने सॉल्व होते। ये ज्यारत के बारे में है कि अगर दीवारें तुम्हारे सामने खड़ी हुई हैं, हर्डल्स है, ये काम वो काम, ये नहीं वो नहीं, दीवारें दीवारें खड़ी हुई। अगर मौला हुसैन की कोई ज्यारत है अरबईन पड़े ये 40 दिनों में, और किसको हदिया करना, मजलूम शहजादी जैनब शहजादी उम्मे कुलसूम, अरबईन बीबी का हक है, उनको हदिया करो और 14 मासूमीन को, और वो चारों बीवियों को हदिया करो, जनाबे रबाब, जनाबे लैला, जनाबे उम्मे फरवा, जनाबे शहरवान। आखिर में बोलो बीबी नरजिस खातून और बीबी हकीमा खातून, 10वें इमाम की बहन, 9वें इमाम की बेटी, 11वें इमाम की फुई, जमाने के इमाम की दादी, जो एक जरी के अंदर है, बीबी नरजिस खातून और बीबी हकीमा खातून अंदर है। ये दो बीवियों को, चारों करबला की, जनाब रबाब, जनाब लैला, जनाब उम्मे फरवा, जनाब शहरवान, इनको करो, और शहजादी जैनब शहजादी, आप मुझे दुआ देना 2 दिन के बाद, यू स्टार्ट एंड यू सी, ये वो ज्यारत है। बीबी रबाब को जरूर करना, इसलिए कि ये वो बीबी है जिसकी गोदी करबला में भी उजड़ी, शाम में भी उजड़ी, जिसका जुमला है कि मेरे वाली वतन जाके क्या करूं, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, मेरी गोदी भी उजड़ गई। बस दोस्तों, जिन जिन लोगों ने आज के मजलिस को स्पॉन्सर किया है, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा करे और उनके रिस्क में बरकत दे, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करे, और जो दरे हुसैन का कैंपेन चल रही $100 की, आज उस शहीद का जिक्र है यहाँ पर इस इमाम बारगाह में, कि जैसे भाई ने ऐलान किया, बेशक ये बाबुल हवाइज है, बेशक ये बाबुल मुराद है। मैंने कल अहले बैत चैनल पे बोला था, आज मैं नहीं बोलता आपको, इतने लोगों ने लंदन में शहजादे की नज़र की, मैं वाल शहजादे के मसाइब पढ़ के आपके पास आया, 1 घंटा पहले वहाँ पढ़ रहा था, घर में नज़र करो, आज नहीं कर सकते ना कल भी कर सकते, कोई मुश्किल नहीं। शहजादे की नज़र, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे 100 आदमी को बुलाओ, यू योर हस्बैंड एंड योर किड्स, 4 आदमी घर में नजर करो, सिर्फ आप और आपके हस्बैंड है नजर करो, कोई मुश्किल नहीं, फैमिली में कर लो कम से कम, हर घर में, न्यूजर्सी के, न्यूयॉर्क में, जो जो मुझे सुन रहा, दरे हुसैन शहजादे अली असगर की नजर और बीबी सकीना की नजर साथ करो, उसके बाद देखो ये कैसे बाबुल हवाज और बाबुल मुराद है। तुम्हारी कोई दुआ इससे बड़ा वास्ता नहीं रबाब के 2 बच्चों का, दोनों मासूम है और दोनों मासूमों को जुल्म अजीम से शहीद किया गया, जुल्म से। आपको कूफे का वाकया याद है, उम्मे हबीबा वाला, उम्मे हबीबा ने क्या कहा था कि मैंने बीबी जहरा से सुना है, मैं नहीं बोल रहा, उम्मे हबीबा के क्या जुमले थे कि मैंने बीबी जहरा से सुना है कि अल्लाह यतीम की और कैदी की दुआ जल्दी कबूल करता, आप यतीम भी हैं और कैदी भी। उम्मे हबीबा का जुमला जो बीबी जहरा को उन्होंने खोट किया था, ये शहजादी सकीना, इतना बड़ा वास्ता है कि यतीम भी है और कैदी भी थी, और शहजादी अली असगर, इससे कम, इससे मासूम तो कोई हो ही नहीं सकता कि जिसके ऊपर ये जुल्म हुआ। दोनों की नजर करो घर के अंदर, आज रात हो गई आपके पास, या रात हुई पता नहीं क्या टाइम हो, 6:30, 7:30 हो रहे हो, अब कर सकते करो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप लोग घरों में बैठे हुए हो ना, घरों में बैठ के सुन रहे ना, दूध लो, दूध पे शहजादी अली असगर का रखना ग्लास में, और शहजादी सकीना के किस पे रखना पता, तड़प के रोग ठंडे पानी पे, चिल्ड वाटर, आपको बाहर से लाने की तो जरूरत नहीं है। हर आदमी आज की रात दे दे, उसके देना क्या, सलवात पढ़ो, अलहम पढ़ो, सूरह तौहीद पढ़ो, सलवात पढ़ो, और अल्लाहुम्मा लान कतलतल हुसैन व औलाद हुसैन पढ़ो, अल्लाहुम्मा लान कतलतल हुसैन व औलाद हुसैन, में नाम किसी का नहीं, अगर कोई कोई सुन रहा भी तो मैं बहुत बहुत अदब व खायदे से बात कर रहा हूँ, अल्लाहुम्मा लान कतलतल हुसैन व औलाद हुसैन, साहब 100 मरतबा पढ़ो एक तस्बीह, बहुत अच्छी बात है, घरों में ही हो ना, उसके बाद देखो आप मुझे दुआ देना, मुझे दुआ के अलावा कुछ नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट गिव मी दुआ, ये अमल ये आज नजर करो। ऐसा मुजर्रिब अमल है कि हर शहर में, बाद शहरों में तो मैं नहीं बोल सकता नाम, मैं मिंबर से जा रहा, मेरी लाइफ जारी मदी, इसलिए मैं बहुत एहतियात कर रहा हूं। ऐसा मुजर्रिब अमल है शहजादे असगर का, बीबी सकीना का, एक करके देखो तुम्हारी फैमिली लाइफ का, तुम्हारे हस्बैंड एंड वाइफ के साथ, तुम्हारी मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के साथ, मतलब रिस्क के लिए और जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अब जो चाहे मांगो, ये अमल करो। कल इस अजाखाने में दर हुसैन शहजादा कासिम की मेहंदी होगी, शहजादे कासिम की मेहंदी अपने घर में भी करना, नजर करना, मेहंदी नहीं करना, नजर करना। वो लड़कियां के जिसकी शादी नहीं हुई, या वो फैमिली जिनके फैमिलीज में प्रॉब्लम है, अगर फैमिली में खुदा ना खास्ता बनो, खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम, ये नजर करो, और नजर करके बीबी उम्मे फरवा को हत्या करो। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, फल्ला के कर लो, बोलोगे शहजादे कासिम का वास्ता, बीबी फातिमा कुबरा का वास्ता, अल्लाह उनके नाम पर दे दे। आप करके देखो, मैं आपको कोई लंबी छोटी लिस्ट नहीं दे रहा, मैं आपको बोला कि ये मासूमीन से एक रिश्ता बनता है। और आज घरों में, अपने हर घर में, न्यूजर्सी, न्यूयॉर्क में, जो जो दर हुसैन पे सुन रहा, इवन पाकिस्तान में सुन रहे, मुझे इंडिया में सुन रही है मदीस है, मैं सबसे बोल रहा कि प्लीज ये नजर दो दूध पे और जना और ठंडे पानी के ऊपर। घर घर में दूध है, ग्लास को पाक करो, दूध डाल दो, टिन खोलो उसमें डाल, और ग्लास में ठंडा पानी ले लो, रख अभी भी सकीना जनाब उनको दे दो। ये आप यकीन करो हम भी करते हैं, मेरी तो कोई ऐसी नजर है, फौरन घर में करता हूँ। इस वक्त बॉम्बे में इसलिए नहीं कर सकता, मैं ऑलवेज आई डू इट सादे दिनों में, कि यह काम हो जाएगा तो मैं बीबी सकीना जनाबे अली असगर की नजर साल भर कर सकते हैं। लेकिन आज उस शहीद का जिक्र, उस मासूम बच्चे का जिक्र जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका, मौला आपको आबाद रखे, मौला आपको सलामत रखे। दर हुसैन ने बेहतरीन इंतजाम किया, मौला हुसैन का जिक्र करने की झूला भी उठेगा, शहजादे का मातम भी होगा, नोहा भी पढ़ा जाएगा। दोस्तों ये लोग कुछ पैसे मांग रहे हैं, $100, आज जनाब अली असगर के नाम पे दे देना, आज कल जनाब कासिम के नाम पे दे देना। आप मांग देख के देखो यार, देख के देखो कि कैसा इमाम देता है तुमको, कैसा देता है। $100 कम अज कम ये मुहर्रम में इनकी लाज रख लो, मैं भी आपका मेहमान हूं, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मौला ने मुझे बहुत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिया, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, इतना बोल रहा हूं हुसैन के नाम पे बोल रहा हूं, मुझे थोड़ी कुछ मिलना, मैं तो अभी आया भी नहीं कभी दर हुसैन, देखा भी नहीं, लेकिन ये नाम से इतनी मोहब्बत है कि यही बोलता कि मौला दर हुसैन तक पहुंचा दो मुझे, हुसैन के दर तक अल्लाह से दुआ यही कि अल्लाह तू दर हुसैन तक पहुंचा दे, अगर दर हुसैन मिल गया तो मेरी बख्शिश हो जाएगी, दर हुसैन मिल गया मुझे तो बख्शिश हो जाएगी, उस दर को मैं छोड़ूंगा नहीं, पकड़ लूंगा। अगर अल्लाह को यही दुआ कर रहा कि मौला परवरदिगार मेरे आमाल दर हुसैन तक पहुंचा दे, मेरे आमाल को दर हुसैन तक पहुंचा दे, अब हुसैन है मेरे आमाल है और तू है कि परवरदिगार, अदरवाइज तो हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास है क्या, कुछ नहीं है, सिर्फ मौला हुसैन का दर है। अगर ये दर पे मैं ठहर जाऊं और दर हुसैन मुझे मिल जाए तो दुनिया की सारी नेमतें ना मिले, हुसैन का दर मिल जाए मुझे। एक साल बाद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस आबाद रहो, खुश रहो, कोई गम मत दे सिवाय गमे हुसैन के, आपको कोई गम मत दे सिवाय गमे हुसैन। जहां भी बैठ के सुन रहे हैं आप लोग, अपने घरों में सोफास पे है, चेयर्स पे है, शूज में है, चप्पल्स में, प्लीज प्लीज रिमूव योर शूज, रिमूव योर चप्पल्स। जब से मैं 5 महीने से ऑनलाइन मदी से पढ़ा, मैं बार बार ये बोल रहा कि निकाल दो। क्यों बोल रहा? इसलिए कि हमारा अकीदा है कि मादर हुसैन आती है, और आज उस शहीद का जिक्र है। दोस्तों पता नहीं आज कौन कौन बीबी आके, रबाब तो जरूर आके तुमको दुआ देके जाए, आज ऐसा फुर्सा देना कि आज रबाब के दिल को सुकून मिले कि मेरे बच्चे का मातम हुआ, उस शहीद का मातम है, उस मासूम का मातम है, जिसकी माँ की गोदी करबला में भी उजड़ी, शाम में उजड़ी, जिसकी माँ यही कहकर रोती थी, रबाब पूरी जिंदगी ये कहकर रोती थी कि अली असगर तुम भी नहीं रहे, तुम्हारा झूला भी जल गया। अली असगर, तुम भी नहीं रहे, तुम्हारा झूला भी जल गया। माँ कैसे जिंदा रहे बेटा? आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। दोस्तों, शब आशूर जब आई, मौला हुसैन जब रबाब के खैमे में गए तो रबाब की आंखों में आंसू आ गए। इस माँ को देखा कि रबाब अली असगर के झूले पे सर रख के एक जुमला कह रही। क्या कह रही? कि मेरे लाल, कल हर माँ अपनी कुर्बानी को पेश करेगी, लेकिन बेटा तुम इतने छोटे हो कि तुम खुद जा भी नहीं सकते। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। मैं ये कहूँ, बीबी आपका बेटा वो जंग लड़ेगा कि लोग अली अकबर की जंग भूल जाएंगे, शहजादी की वैसी जंग। आशूरे का दिन जब पूरा घर उजड़ गया, कितनी आसानी से मैंने बोल दिया, अली अकबर जैसे शहीद का लाशा उठा लिए हुसैन, खासी मौलाना मोहम्मद की लाशें उठाए, मेरे मौला अब्बास के कटे हुए शानों को उठाए, सब करके जब मेरा मौला मैदान में आके कहा गया हर मिन्ना सिरुन यंसुरुन, अरे कोई है मेरी मदद करे, कायनात में हलचल मच गई, कायनात में हलचल मच गई। लेकिन खयाम हुसैनी से गिरिया का आवाज़ें आने लगी। हुसैन पलट के आए, आके कहा बहन जैनब अभी हुसैन जिंदा है, रोने का सबब क्या है? शहजादी ने कहा कि माँ जाए तुम्हारी आवाज़ पे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। हुसैन ने कहा लाओ मेरे लाल को मेरे हवाले करो। बीबी रबाब से कहा रबाब मेरे बच्चे को दो, मैं अब जाके पानी मांगता हूँ। क्या गरीब हो गया, क्या गरीब हो गया था हुसैन। ये जुमला रोने के लिए काफ़ी है कि हुसैन कह रहे कि लाओ मेरे बच्चे को मैं पानी कुछ मांगता हूँ। साखिए कौसर का लाल है हुसैन, साखिए मौला हुसैन का जुमला है कि आशूरे के दिन मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जब मैं खैमे के अंदर जाता तो छोटे छोटे बच्चे मुझे घेर लेते और कहते मौला प्यास मारे डालती है, प्यास मारे डालती है, हुसैन तड़प जाते। बस दोस्तों, वो लम्हा आया, वो लम्हा आया कि रबाब ने ला के मेरी तरफ़ देखो, मेरी तरफ़ देखो, तुम तड़प के रोगे। ला के रबाब ने अली असगर को दिया। जनाब अली असगर के बारे में ये है कि इतने हसीन और खूबसूरत थे, शहजादा इतना हसीन और खूबसूरत था कि शहजादे को देख लोग ये कहते थे कि उफ कैसा ये प्यारा है। इमाम अली के मौला हुसैन का एक जुमला है, मौला हुसैन का एक जुमला है कि बीबी जैनब से इमाम हुसैन ने कहा था उस वक्त कि जब मदीने से जब जनाब सुगरा को लेके नहीं जा रहे थे तो उस वक्त शहजादी जैनब ने कहा था कि भैया बच्ची ये पूछ रही है कि आप साथ क्यों नहीं लेके जाते, तो उस वक्त मेरे मौला हुसैन का जुमला तड़प के रोते हुए हुसैन ने कहा था। क्या कहा था? कि बहन तुम जानती हो कि मेरी जो औलाद है कोई मेरे नाना जैसी है, कोई मेरे बाबा जैसी है। जनाब अली असगर के बारे में ये है कि ये शबी थे मेरे मौला के, मेरे मौला का जो बचपना था, मौला जैसे थे 6 महीने में, बिल्कुल शबी थे, बिल्कुल वैसी दहना था, मुस्कुराहट वही थी जो अली की थी, इतना हसीन और खूबसूरत। और उसके बाद हुसैन ने कहा था कि बहन तुम जानती हो मेरी बेटी फातिमा सुगरा मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ जैसी है, अगर सरों से चादर छीनी जाए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसका चेहरा फातिमा जैसा हो वो बाजारों में जाए। तो शहजादे अली असगर इतने हसीन, रबाब ने ला के दिया आपकी भी गोदों में बच्ची, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी औलाद को सलामत रखे। उन माओ से बोल रहा कि जिनके बच्चे हैं वहाँ जिनकी औलाद नहीं है, मांग लो रबाब के इस बच्चे के नाम पे, देखो अल्लाह तुमको कैसे देता है। ला के रबाब ने अली असगर को हवाले किया, हुसैन के मौला हुसैन ने लिया, प्यार किया। बच्चा इतना कमज़ोर, इतना कमज़ोर, प्यास से बेचैन, 3 दिन हो गए ना दूध है ना पानी, लिया प्यार किया। चंद कदम कहमे के अंदर चले मौला हुसैन, जैसे ही चले रबाब ने आके फिर रोका, आप तड़प के रोएंगे अब क्या क्या माने, माँ की ममता देखो। चंद कदम चले, रोक के कहा मौला कुछ लम्हों के लिए मेरे बच्चे को मेरे हवाले कीजिए। हुसैन ने फिर हवाले किया। बीबी अंदर गई, अंदर जाके चंद लम्हों में वापस आई, लाया तो देखा कि नया कुर्ता पहना दिया और कहा बालों को सवार दिया, झंडूले वाले पालते बालों को सवार दिया, नया कुर्ता पहनाया और कहा मौला मेरा बच्चा पहली मर्तबा मैदान में जा रहा। माँ की ममता, आपको पता है अजीजों वो आखिरी मर्तबा था रबाब ने अली असगर का कुर्ता बदला, उसके बाद माँ को चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला, वो आखिरी मर्तबा था, नया कुर्ता पहना के भी जाया। जैसे ही पहुंचे इमाम ने जुमला इमाम का, मेरे बच्चा प्यासा है इसको पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी पिला दो। जालिमों ने पलट के नहीं देखा, जालिमों ने पलट के नहीं देखा तो हुसैन ने उस वक्त कहा अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने से पानी मैं पीऊँगा, लो मैं अपने बच्चे को जल्द, क्या वक्त आ गया था, कितना गरीब हो गया था हुसैन, कितना गरीब हो गया था हुसैन। इमाम ने जलती हुई रेत पे लिटाया, कहा अपने हाथ से पिलाओ, कोई जालिम आगे नहीं बढ़ा। बाप का दिल फट गया, फौरन उठाए सीने से लगा लिया, सीने से लगा के कहा मेरे लाल अली असगर, मेरे लाल अली असगर, तुम भी हुज्जत खुदा के बेटे हो, बेटा अपनी हुज्जत का तमाम करो। तो दोस्तों अली असगर ने अपनी सूखी हुई जबान खुश्क होंठों पर फेरना शुरू किया। अरे मेरा बाबा जो कह रहा है सच है, मैं बहुत प्यासा हूँ। उमर साहब कहता है इतना कलाम उल हुसैन, जालिम हुरमुला वो जालिम था, जब उस तीर चलाता था तो सात लोहे की दीवारों को चीरता हुआ उसका तीर जाता था। हाय अली असगर के लिए चुना गया, हुरमुला ने निशाना लगाया, हुसैन के हाथ पे अली असगर है। दोस्तों जब तीर चला तो सनसनाता हुआ तीर हुसैन के हाथ पे अली असगर मुनकलिब हो गए। इमाम को यकीन नहीं आया, फौरन सीने से लगा लिया। ये कहते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीजों उसके बाद मौला कैमे की तरफ आए, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। जैसी दरवाजे कैमा पे पहुंचे, रबाब को इतना यकीन था कि मेरा बच्चा पानी पी के आएगा, ठहरे भी थी माँ इंतजार में कि मेरा बच्चा पानी पी के आएगा। दोस्तों जैसी पहुंचे, रबाब का जुमला था, हुसैन ने कुछ नहीं कहा, रबाब ने कहा मौला मेरा बच्चा पानी पी चुका, अब हुसैन जवाब क्या दे। सर को झुका लिया, सर को झुका के कहा रबाब तुम वादा करो सबर करोगी। बीबी को अभी तक यकीन नहीं आया, बीबी ने कहा मौला मैं वादा करती हूँ। हुसैन ने अब आके दामन को हटा दिया, माँ की चीख निकल गई, तड़प के यकीन नहीं आ रहा था, चीख के कहा मेरे लाल अली असगर, क्या तुम्हारे उतने बच्चे भी जिबा किए जाते हैं। शहजादे को सीने से लगा के कहा अली असगर तेरी माँ को यकीन नहीं आ रहा बेटा, अरे खैमे में रहता, अरे पानी के लिए तेरी जान चली गई। लाही वो सैयदी वो बोला परवरदिगार मेरे शहजादे अली असगर की मुसीबतों का वास्ता है, हमारी मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर दे। परवरदिगार ये मजलिस बीबी जहरा की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर दे। मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख। अल्लाह हमको सीरत इमाम हुसैन, सीरत मौला अली अलैहिस्सलाम पे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये हमारी आज़ादारी बीबी की बारगाह में कबूल हो जाए। जितने बीमार हैं अल्लाह सारे बीमारों को सेहत दे दे। इमाम के जहूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। जिन जिन लोगों ने आज की मजलिस को स्पॉन्सर किया अल्लाह उनके सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा और उन मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। हाँ।